Shit did you? एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि क्षितिज कार्यक्रम हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हिंदी से जुड़े हुए अनेक विषयों को और भारत से बाहर हिंदी से जुड़े हुए जो भी लोग आते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम अपने श्रोताओं को सूचित करना चाहते हैं कि हिंदी सचिवालय हर वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाता है। इस तरह इस दिन के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन तो किया ही जाता है, साथ साथ में देश विदेश से अनेक विद्वानगण इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर क्रिस्टीना डोलिनिना। डॉक्टर क्रिस्टीना डोलिनिना, आप लिथुआनिया से हैं और हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना और वो हिंदी दिवस के कार्यक्रम से जुड़कर अपने अनुभव, अपने यहाँ के कुछ अनुभव साथ लेकर जाएंगी। इसीलिए हमने आज स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित कर उनके विचारों का आदान प्रदान आपके साथ करना चाहा है, साझा करना चाहा है। और सबसे पहले डॉक्टर क्रिस्टीना जी, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि आप अपने लिथुआनिया में आपने हिंदी का डॉक्टरेट की है भारत से, और इसके अलावा आप नृत्य में भी माहिर हैं, ओडिसी और कथक नृत्य में आपने स्टडी की है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हिंदी की रुचि के साथ साथ हिंदी का जानना आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और उसके बाद जब मैंने आपको सुना आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लिथुआनिया में आप हिंदी का प्रचार कैसे करती हैं और कैसे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप हिंदी का प्रचार वहाँ करती हैं।
हाँ जी, धन्यवाद प्रश्न के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग लिथुआनिया में है नहीं, तो
अभी शायद सी बात।
हाँ जी, अभी शायद भर जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, भारतीय मिशन स्थापित हुई है पिछले साल, मतलब आधा साल अभी हो गया, तो उम्मीद है कि बहुत हिंदी में भी
और लोग रुचि रखेंगे।
हाँ जी, और संस्कृति में भी, नृत्य में भी रुचि रखेंगे और लोग भी आ जाएंगे, भारतीय लोग भी आएंगे, समुदाय बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ आने के बाद हिंदी का प्रसार प्रचार और आसान हो जाएगा।
हाँ, आसान भी होगा और बढ़ेगा।
हाँ, लेकिन अभी ये आसान नहीं है।
हाँ,
क्योंकि सिर्फ कुछ छात्र है विश्वविद्यालय में, बच्चों को तो हम सिखाते नहीं क्योंकि स्कूल में हिंदी है नहीं।
अच्छा।
सिर्फ विश्वविद्यालय में जब ये छात्र आते हैं इंडोलॉजी या साउथ एशियन अध्ययन,
लैंग्वेज को लेना होता है उनको,
मतलब वो सिर्फ भाषाओं की अध्ययन नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाए, मतलब दर्शन आते हैं, इतिहास आते हैं, कुछ कंटेम्पररी आधुनिक कुछ मामलों का अध्ययन होता है, तो ये सब कुछ एकता करके एक अध्ययन प्रोग्राम बना हुआ है। और इसमें संस्कृत और हिंदी सीखना भी
अनिवार्य
होता है।
तो उसमें आपने हिंदी ली होगी, जो आज आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलनी आती
जी
है।
अभी तो मैं सिर्फ साहित्य सिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं 2010 से शुरू किया, इससे पहले भी हिंदी थी, लेकिन दूसरे व्यक्त, मतलब दूसरे लेक्चरर्स सिखाते थे जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। और 2010 में भारत से वापस आई हूँ और तब से हिंदी सिखाने में
जुड़ी हुई,
मतलब हिंदी सिखाने से जुड़ी हुई हूँ, और सिर्फ भाषा नहीं लेकिन साहित्य भी।
साहित्य
तो अभी मेरी एक छात्र है जो अभी हिंदी शुरुआत से सिखाती है, जैसे व्याकरण 3 सेमेस्टर से वो सिखाती है, फिर उसके बाद मैं सिखाती हूँ, और ये ज़्यादा मौखिक या बोल चल की हिंदी सिखाती हूँ और साहित्य। साहित्य संक्षिप्त इतिहास, तो यही मेरा तरीका
सिखाने का, बढ़ाने का,
बढ़ाने का, हाँ, हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए। और क्योंकि मेरी खास रुचि साहित्य में ही रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भाषा समझने और संस्कृति को समझने में तो साहित्य को पढ़ना ज़रूरत,
बिल्कुल
है ना। तो जितना हम पढ़ सकते, जितना हम साहित्य को अनुवाद कर सकेंगे, उतना ही हिंदी मतलब
के बारे में लोग जान सकेंगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे बस थोड़ा सा कोशिश की मैंने कि साहित्य को अनुवाद करूँ, तो एक ममता कलिया की कहानी है बोलने वाली औरत, तो उसका अनुवाद मैंने किया। और सोच रही कि पहले से बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई एंथोलॉजी नहीं है जिसमें हिंदी साहित्य का थोड़ा सा विस्तार से परिचय हो जाए, है ना। तो हम जितना पढ़ते तो ऐसे थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड रूप से करते हैं ना, पढ़ाते हैं, ये पढ़ लिया, ये कहानी हमने पढ़ ली, ये कुछ कविताएं हैं, कुछ ये, तो ऐसे ऐसे थोड़ा मैसी रूप से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं सोचूं कि सबसे जो ज़रूरत काम अभी है हमारे संस्था में, कि हम एंथोलॉजी तैयार करके, इसको पब्लिश करके छात्रों को उसी के माध्यम से हम सिखा सकते, और हिंदी साहित्य से थोड़ा गहरा पहचान दे सके,
दे सकते।
हाँ, तो और उसी के माध्यम से तो भाषा के भी प्रचार
बिल्कुल
प्रसार हो जाएगा।
अब मैं कहती हूँ क्योंकि आज हिंदी को पढ़ने पढ़ाने उसके प्रचार करने के बहुत से माध्यम हैं।
हाँ, पूरा इंटरनेट
पूरा, यही मैं कह रही हूँ, आज बहुत माध्यम है। लेकिन जो मैंने आप में खूबी देखी, आप नृत्य से जुड़ी हुई हैं।
हाँ जी।
क्या आप बताएं मुझे कि हिंदी का प्रचार प्रसार क्या संगीत जो या नृत्य के माध्यम से भी किया जा सकता है?
अवश्य, अब मतलब ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और ये बहुत बहुत अच्छा माध्यम है,
बहुत अच्छा, क्योंकि मैं समझती हूँ इंटरटेनिंग है, और जो लोग आज चाहते हैं
सही,
कोई भी चीज़ में मनोरंजन वो चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक आसान तरीका हो सकता है, क्योंकि आप दो से जुड़ी हुई हैं, एक भाषा और ऊपर से नृत्य, और नृत्य के साथ, क्योंकि देखिए आज विश्व भर में योग का अगर प्रचार प्रसार हुआ है, तो कहीं ना कहीं योग जो, चाहे उसको जिम के रूप में ले लो, चाहे म्यूजिक के साथ ले लो, तब लोगों ने उसको ज्यादा जाना है। जबकि योग अपने आप में एक बहुत ही पहुंची हुई
है,
बहुत, यस, बहुत गहरा उसका दर्शन है अपना। लेकिन नृत्य ने मतलब एक जिस तरह से मॉडर्न तरीके से लोगों ने योग को अपनाया है, वो आसान हो गया।
हाँ,
तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके कॉलेज में बच्चे होंगे तो आपके लिए सहज होगा नृत्य के माध्यम से उन्हें, हाँ, हिंदी में प्रचार, हाँ, प्रसार करना।
हाँ, जो कुछ छात्र जो आते हैं हिंदी सीखने के लिए, मतलब बीए करने के लिए इंदोलॉजी में, तो जरूर मेरे पास ही आते हैं नृत्य सीखने के लिए। और नृत्य तो मतलब उसका भी एक बड़ा सा दुनिया है,
अपने आप में बड़ा क्षेत्र है।
हाँ जी, वो भी इसमें दर्शन भी है, एक सिद्धांत है आपने आप। लेकिन नृत्य का क्या खास बात है कि वो साहित्य से बहुत
जुड़ा हुआ है।
हाँ जी।
यही बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और जहां आपने कहा साहित्य, हाँ, और फिर उसके बाद नृत्य, क्योंकि नृत्य और साहित्य दोनों अपने में एक भिन्न कलाएं हैं, हाँ, जो, हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई,
वही तो नृत्य करते हुए मैं कुछ कहानी तो सुनाती हूँ,
हाँ,
चाहे ये कुछ
किसी लोक कथा से,
हाँ,
या किसी दंत कथा से,
या काव्यों का,
काव्यों से, हाँ बिल्कुल, काव्य के नृत्य, हाँ, और नृत्य के माध्यम से तो कितनी कथाएं जो है हम मंचित कर सकते,
हाँ,
हैं, दर्शा सकते हैं, रामायण, महाभारत, गीता,
सब कुछ आता है इसमें,
तो ये आपके लिए आसान हो सकता है,
हाँ,
कि,
हाँ,
उसमें बच्चे ज्यादा रुचि ले सकते हैं।
हाँ, नृत्य अपने आप भी किसी को दिलचस्प लगती है,
हाँ, हाँ,
तो मेरे पास आके उनको कुछ तो पता चलता है संस्कृति के बारे में, कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर मैं गीत गोविंद मतलब ओडिसी के माध्यम से सिखाती हूँ ना,
तो सारा कुछ में आ सकता है,
उनको पढ़ना तो होता है, मतलब कहानी जानना चाहिए चाहिए होता है ना, तो कहानी जानने से उनको संस्कृति में थोड़ा सा गहरी जानकारी मिलती है। और कई ऐसे कथक में खास करके, क्योंकि ओडिसी तो संस्कृत ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन कथक में हिंदी का प्रयोग बहुत होता है ना,
कहानियां, मुद्राएं, कहानियां
सब कुछ हिंदी में,
और हमारी अभिव्यक्तियां जो है, हमारे एक्सप्रेशन जो है भाव, वो सब हमारी संस्कृति की पहचान है।
तो उनको एटलीस्ट सुनना तो पड़ता है ना, अगर उनको ये लोग पढ़ भी नहीं सकते लेकिन सुनते तो है,
सुनते
तो
उनको हैं, देख सकते
देख
हैं,
सकते हैं,
और देख कर ज्यादा हाँ लेकर वो रुचि लेते हैं।
और एक चीज बताना जरूरी है कि मेरी जो गुरुजी है पद्मश्री शोभन नारायण, जो दिल्ली से है, वो वैसे पाटना से है लेकिन दिल्ली,
दिल्ली
मेरे पास, मतलब उनके पास सिक्किम है तो दिल्ली में, तो वो काफी आधुनिक मतलब मामलों को कथक में लाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ
शास्त्रीय
नहीं लेकिन आज का, लेकिन साहित्य के स्तर पे, तो वो बहुत, वो भी साहित्य में काफ़ी रुचि रखती है, तो काफ़ी मतलब आधुनिक, जैसे निराला का कुछ कविता गई,
उसको
नृत्य
में अभिव्यक्त करना,
हाँ जी, तो उन वो खास करके ये इसमें बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि उनके थ्रू, उनके माध्यम से मेरे पास भी ये संभावना आ गई है कि मैं जो भी कुछ मतलब पाठ है आधुनिक हिंदी साहित्य का, जो भी कुछ कहानी हो, कविता हो, जो भी कुछ, मैं इसको नृत्य में डाल सकती हूँ,
क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मैं समझती हूँ कि आज सबसे एक अच्छा तरीका ये भी है नृत्य के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार, उसमें भी एक नई रुचि हमारी नई पीढ़ी के लोग जो रखते हैं, तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और वैसे भी साहित्य जो हिंदी साहित्य है, जैसे मैं इसमें आलोचना नहीं करना चाहूँगी, हमारे हिंदी साहित्य जो है उसमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा ये सब कुछ इसमें है,
हाँ सब कुछ है, मतलब तत्व है,
हाँ पूरा तत्व से भरा हुआ है।
हाँ जी, हाँ जी।
तो मेरे को लगता है कि आपके पास दो प्लस पॉइंट है, एक साहित्य और एक नृत्य, और साहित्य और नृत्य का अपना अटूट संबंध है।
हाँ जी,
तो
हाँ जी।
मुझे अच्छा लगा आपसे जानकर, और मैं समझती हूँ कि आप जरूर इस माध्यम से लिथुआनिया में, जैसे आपने कहा इतने लोग बोलते नहीं है, लेकिन शायद इस माध्यम से आप हिंदी का प्रचार प्रसार ज्यादा कर सकेंगी।
कोशिश मैं करूंगी
जरूर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे साहित्य में ही सब कुछ है।
हाँ जी, हाँ जी।
तो उसको अगर आप नृत्य से जोड़ देंगी तो ज्यादा लोग रुचि लेकर आपके पास आएंगे, और हिंदी का प्रचार अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर कि नृत्य के माध्यम से भी हम हिंदी का प्रचार प्रसार सशक्त रूप में कर सकते हैं।
सशक्त और सरस,
सरस बहुत आप, क्योंकि सहजता से लोग नृत्य की ओर आकर्षित हो जाते
हैं।
सबसे पहली बात ही आकर्षित करने की है उनको।
हाँ जी, हाँ,
और ये सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है नृत्य, फिर आगे चल सके। तो चले, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि लिथुआनिया में आप नृत्य के साथ अपने छात्रों को जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में उसे आगे बढ़ाने की जो है आपको क्षमता भगवान जो है प्रदान करे।
बहुत और
अच्छा लगा आपसे मिलकर, इस छोटी सी बातचीत के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, और हमारी तकनीकी सहायिका अंजू, उसको भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और एक बार फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात अवश्य होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
नमस्कार जी।
क्षितिज, क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर।